भगवान कहते हैं कि मुझे अगर प्रसन्न करना चाहते हो, मुझे खुश करना चाहते हो तो चार वस्तु मुझे दो। चार वस्तु, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो वे भक्ता प्रयच्छति। यह चार वस्तु कहां, अमेरिका में कहां से लाओगे पत्रम पुष्पम फलम? पुष्प तो मिलते हैं और भक्ता फलम, फल भी बहुत ढगले हैं। अरे पैसा वाला चाहेगा तो बहुत बड़ा बगीचा लगाकर भगवान को पत्ते का बहुत बड़ा ढेर लगा देगा, ढक देगा, फलों से ढक देगा। पत्रम पुष्पम फलम, पत्र पुष्प फल और तोय का मतलब पानी। यहां तो नल लगे, भगवान शंकर के मंदिरों में देखो तो नल लगे, खूब डालो पानी भर दो। लेकिन तुम यही बैठे रहो, ये सारी चीज भगवान को यही बैठे बैठे अर्पण करो, बैठे बैठे। अब विचार करो, तुम्हारे पास पत्ता क्या है? पहला क्या है? पत्रम पुष्पम, पत्र का मतलब अभी कहा है ना, चंदन सीयस्य पर्णानि। पत्र का मतलब क्या है? वेद। वेद का मतलब क्या है? ज्ञान। तुम्हारे अंदर ज्ञान कहां है? इस मनुष्य के अंदर। वेद का मतलब ज्ञान, ज्ञान का मतलब तुम्हारी बुद्धि। सर्व व्यवहार हेतु बुद्धि ज्ञानम शास्त्र कहता है कि बुद्धि में ही ज्ञान है, और ज्ञान तुम्हारा जो बुद्धि है वह परमात्मा कहता मुझे अर्पण करो। क्या करोगे अर्पण? बाहर वाला पत्ता नहीं, कौन सा पत्ता? वह चंदन सी यस्य पर्णानि, तुम्हारे अंदर जो ज्ञान है, तुम्हारे अंदर जो बुद्धि है, तुम्हारे अंदर जो धृति स्मृति है, धृति स्मृति तीन बताया था मैंने, ये सब को तुम परमात्मा के चरणों में अर्पण करो। और पुष्प, पुष्प भी है ना, कौन सा पुष्प है तुम्हारे पास? यहां हृदय जानते ना, पुंडरीकेन सद्रसं हृदयम नामो पुंडरीकेन। पुंडरी किसको कहते? कमल। कमल के समान ऐसा ये हृदय है, हृदय रूपी कमल का फूल है वो। भगवान कहते हो हृदय मुझे अर्पण करो। क्या करो? हार्डली लोग दुनिया को दे रहे हैं ना अपना हृदय, किसको देते हो? दुनिया में। तो परमात्मा कहता है वो फूल मुझे चाहिए। कौन सा फूल? पुंडरीकेन सद्रसं हृदयम नाम, जो हृदय रूपी पुष्प है, कमल के फूल के जैसा है इधर यूं, वह खिलता है, बंद होता, खिलता बंद होता, यह चलता ही रहता है। इसलिए परमात्मा को तुम्हारी बुद्धि रूपी ज्ञान, हृदय रूपी, तुम हृदय भी परमात्मा को अर्पण करो। पत्रम पुष्पम फलम, फल क्या है तुम्हारे पास बोलो? अरे जब सुबह से शाम तक जो तुम सत्कर्म करते हो, जो दान करते हो, तप करते हो, पुण्य करते हो, जो भी यज्ञ करते हो, व्रत करते हो, हैं, जो भी करते हो, उसका जो फल है वो परमात्मा को अर्पण करो। फल तुम्हारे पास और दूसरा नहीं है, ये सत्कर्मों का फल है जो भी हम दिन भर करते हैं, परमात्मा कहते हो अर्पण करो। अब चौथा क्या रहेगा तुम्हारे पास? है जल। जल का मतलब क्या है जानते हो? जल का मतलब जीवन है। जल का मतलब यह जीवन है, उसी का नाम जल है, तोय है। इसलिए परमात्मा कहते जीवन भी तुम्हारा अर्पण करो। क्या अर्पण करो? अर्जुन ने अपना जीवन अर्पण कर दिया कि हे परमात्मा, यत् करोषि यदन्नासि, यत् जहोषि ददासि, यत् तपस्यसि कौन्तेय, तत् कुरुष्व मदर्पणम्। भगवान कहता जो भी करते हो यत करोसी यदन्नासी यत जुहोसी ददास यत माने दान करते हो हवन करते हो जो भी करते हो है कुरुस्य मदर्पणम मुझे अर्पण करो। अब तुम्हारे पास रहा क्या बोलो, चार वस्तु में आ गई ना सब, फिर परमात्मा प्रसन्न होगा। लेकिन हम इन चीजों को न देकर बाहर की वस्तु को अगर हम चढ़ाना चाहें, फल का डगला करो पत्र का भी करो लेकिन उसमें भी श्रद्धा के बिना नहीं होगा। हमारे उपासना में परमात्मा व्यक्त बुद्धि निभूतानी व्यक्त मध्य निवारत हो अव्यक्तो निधिनान्ने वा तत्र का परिदेवना। वह ईश्वर परमात्मा पहले अव्यक्त रूप में था लेकिन उपासना के लिए भक्तों के कारण वह व्यक्त हुआ, वह प्रकट हुआ, वह परमात्मा साकार बना। और साकार के लिए अब हमें उसकी पूजा करना है, हमें उसकी उपासना करना है, हमें उसकी भक्ति करना है। इसलिए मुक्ति भक्ति से होगी, ज्ञान से होगी, लेकिन कर्म से मुक्ति होगी नहीं होगी। कर्म से हमेशा नियम है, कर्म तुम्हें लोक लोकांतर की प्राप्ति तो कराएगा। लोक लोकांतर की, तुमने बहुत बड़ा यज्ञ कर दिया, तुमने बहुत बड़ा दान कर दिया और बहुत बड़ी तपस्या कर लिया तो जरूर है अमुक दिन तक अमुक वर्ष तक अमुक कल्प तक तुम अमुक लोक में रह जाओगे। चाहे तुम चंद्र लोक इंद्र लोक सूर्य लोक से नीचे ही रहोगे क्योंकि सूर्य लोक को भेदन करने वाला दो ही व्यक्ति है द्वाविमो पुरुषो लोके सूर्य मंडल में तीनों परिभ्राट योग युक्ते चा रहे चा विमुखा हता। दो ही व्यक्ति है जो सूर्य मंडल को भेदन करके और वहां जाता है नियत गत्वा ना निवर्तन्ते, जहां जाने के बाद पुनः हमारी नीचे गति नहीं है, हमारी रिटर्न जर्नी नहीं है, हमारे स्वरूप की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए दो पुरुष एक परिभ्राट योग युक्त योगी जो सन्यासी है परिभ्राट योगी युक्त उसके लिए वह खुला दरवाजा है सूर्य मंडल को भेदन करके जाएगा और फिर से उसे आना। और दूसरा है जो अपने राष्ट्र के लिए अपने देश के लिए अपने धर्म के लिए जिसने अपने प्राणों की आहुति देता है उसके लिए भी वह दरवाजा खुला है। रण के अंदर हम रण में जब जाते हैं अपना राष्ट्र ही उसका धर्म होता है, राष्ट्र धर्म होता है, राष्ट्र के लिए समाप्त हो जाते हैं उनके लिए वह गति प्रदान भगवान करता है। इसलिए राष्ट्र के लिए हिंसा भी होगी वह प्रतिहिंसा कही जाएगी, उसे हिंसा नहीं कहेंगे। जिस तरीके से यहाँ पर परमात्मा ने अर्जुन को कहा, अर्जुन कहता है मैं हिंसा नहीं करूंगा लेकिन भगवान कहते प्रतिहिंसा तो करना होगा। अगर सामने कोई तुम्हें मारता है तुम पर वार करता है उसे बचोगे तो सही, बचने के लिए प्रतिहिंसा कही गई। हमारे राष्ट्र पर देश पर समाज पर धर्म पर अगर किसी ने अटैक कर दिया है हमला कर दिया है इसलिए तुम्हें वहां प्रतिहिंसा करना पड़ेगा। एक परमात्मा का आदेश है और नहीं करोगे तुम धर्म को नहीं बचा सकते, राष्ट्र को नहीं बचा सकते, समाज को नहीं बचा सकते। इसलिए वहां वह नीति नहीं चलेगी कि हम हिंसा करते हो बैठे रहे तो देश ही समाप्त हो गया, धर्म ही समाप्त हो गया, अपने सभी समाप्त हो गए। नहीं, परमात्मा कहते इसके लिए अगर तुम चलोगे तो सूर्य मंडल को भेदन करके उस पद को प्राप्त कर लोगे। इसलिए यहाँ पर जो कहा गया चार वस्तु बराबर, मैं ये उदाहरण दे रहा था छंदांसी यस्य प्रणाली यस्तम भेद सभेदवित, लेकिन इसमें दो उदाहरण और है, इसको अव्यय भी कहा। आहु अव्ययम, ये दो विशेषण। अब लोगों ने कहा कि महाराज अव्यय तो जो वेद हो वह परमात्मा ही हो सकता है और वह अव्यय पद है और वह पद में जाने के बाद वेद होता नहीं, इस संसार को अव्यय क्यों कहा गया। इसका खुलासा करते हुए कहते हैं कि संसार की परंपरा ये अनादि परंपरा है, यह इसके कारण कि परमात्मा से उत्पन्न होने के कारण इसे अव्यय कहा गया, लेकिन इसमें परिवर्तन है, इसमें विकार है, यह अनित्य है, ये सारे विशेषण ज्ञान के कारण है। लेकिन जो अव्यय कहा गया या इसके क्षुण्ण जो धारा है, यह जगत कब से चल रहा और कब तक चलेगा, इसको कोई जान सकता। न चयादिर न च संप्रतिष्ठा, इसका आदि अंत का पता नहीं। ज्ञान की दृष्टि से यह बाधित होता है, केवल ज्ञान की दृष्टि से, नहीं तो इसकी परंपरा अनादि है। और अव्यय कहने का मतलब यही है कि इसकी धारा अविरत चलती रहती है, जैसे गंगा जी की धारा चलती ना। किसी ने कहा हमने जल में स्नान किया गंगा में, लेकिन जो जल में तुमने स्नान किया वो क्या रहता है, वो तो कहेगा कहीं चला गया, फिर से नया जल आएगा, फिर से जल, तुम जितने डुबकी मारो कितना जल चला गया, उसके अविरत चारा जल रही है। एक दीपक जलाओगे, दीपक की लौ जलती है, एक लौ खत्म हुई दूसरी आई तीसरी आई, क्या ये क्षणिक बात बहुत जगह है। कहने का तात्पर्य जिसको हम धारा जिसकी शून्य चालू है, इस संसार की भी धारा यह अनादि काल से चल रही, इसलिए यहाँ पर इसे प्राहु और अव्यय कहा गया, क्योंकि यह इसका मूल परमात्मा है और परमात्मा मूल होने के कारण ही इसकी विशेषता बताई गई। लेकिन विशेषता के साथ इसके अंदर अगर संसार रूपी वृक्ष को बराबर हम समझ लेंगे या परिवर्तनशील जगत को समझ लेंगे, तो हम इससे जो हम बहुत प्रेम करते हैं, इसमें अनुराग करते हैं, इसमें आसक्त बनते हैं, हम इसमें मोहित होते हैं, तो यह तुम उससे कुछ जाग जाओगे और जानने के बाद भाई कोई भी वस्तु को जानकर मानना जरूरी। लकीर के फकीर नहीं बनना, क्या पहले जानो और फिर मानो। परमात्मा को देखा किसी ने नहीं, लेकिन परमात्मा को पहले तुम्हें उसकी सत्ता को कबूल करना है, मान लेना है और माने बाद वह परमात्मा की प्राप्ति करना है।